इस हफ्ते के दिन जो गुज़श्ता जो हफ्ते का दिन गुज़रा है, शनिचर के दिन, मुहर्रम के बारे में कुछ बातें बताई थी, तो उम्मीद यह है कि इंशाल्लाह सब तक वो बातें पहुंच गई होंगी। वैसे मिक्सलर में रिकॉर्डिंग के वाले हिस्से में जो महफूज रिकॉर्डिंग है उसमें भी वो अखीरी अगर देखेंगे इस हफ्ते के दिन जो तारीख़ थी उस तारीख़ को जो बयान और दुआ वगैरह हुआ था तो उसमें मुहर्रम का तذکرہ किया था। उम्मीद है कि सब तक वो बातें पहुंच गई होंगी। जो अभी तो मुहर्रम में ज़रा देर है, लेकिन मुहर्रम के बारे में कुछ बातें मालूमात से मुतालिक थी और कुछ बातें अमली थी, तो उनको बस याद दहानी के तौर पर कि इंशाल्लाह वो सब तक पहुंच गई होंगी, ताकि क्या करना है हमें मुहर्रम में उन बातों का कि याद दहानी हो जाए। अच्छा, सवालात में आपने बहुत पहले सुबह शाम हिसार के लिए कुछ अज़कार बताए थे, दोबारा। हिफाजत के लिए वैसे तो मुख्तलिफ अज़कार हैं, जैसे सोते वक्त हदीस में आता है कि तीनों कुल, कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ के अपने हाथों पर दम करके सर पर, चेहरे पर और जिस्म पर फेर दिया जाए, यह अमल 3 मरतबा किया जाए, ये भी हिफाजत के लिए है। और हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए, सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ ली जाए, हिफाजत के लिए यह अमल है। उसके अलावा एक बहुत मुजर्रब अमल है, शायद उसी की बात होगी, कि 6 चीज़ें याद रखने के लिहाज से 6 चीज़ें हैं जो पढ़नी हैं। सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ है, उसके बाद 3 मरतबा सूरह फातिहा, फिर 3 मरतबा आयतुल कुर्सी, और फिर 3 मरतबा सूरह फलक, 3 मरतबा सूरह नास, और फिर अखीर में 3 मरतबा दुरूद शरीफ। शुरू अखीर में दुरूद शरीफ, दरमियान में 4 चीज़ें हो गए, फातिहा, आयतुल कुर्सी और फलक और नास। ये पढ़ के इंसान अपने ऊपर दम कर ले, और पानी रखा हो अपने पास, पानी की बोतल हो, उस पानी में दम कर ले और उसे इस्तेमाल करता रहे। यह हिफाजत के लिए कितनी मरतबा करना है, दिन में 3 मरतबा कर ले तो बहुत ही अच्छा है, ना हो तो चलो कोई हरज नहीं, इंसान 2 मरतबा कर ले, लेकिन बहुत अच्छा है कि 3 मरतबा कर ले, वरना कम से कम 2 मरतबा तो कर ले। 2 मरतबा में कब? सुबह सुबह और मगरिब शुरू होते ही और सोने से पहले, ये 3 मरतबा का है। ना हो तो कम से कम सुबह और मगरिब होते ही, सुबह होते शुरू शुरू होते ही और रात शुरू होते ही 2 मरतबा कर ले, और फिर इस दौरान 24 घंटे के दौरान उस पानी इसमें से पीता रहे। अगर कोई असर है तो इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाएगा, और नहीं है तो इंशाअल्लाह हिफाजत रहेगी। ये भी एक मुजर्रब अमल है जो बहुत मुफीद है, बज़ाहिर यही है जिसके बारे में सवाल किया गया है। एक और सवाल है, महीने में जो 3 दिन रोज़े रखने हैं अय्याम 20 के अलावा, ये लगातार 3 दिन हों या अलग अलग दिन भी रख सकते हैं? अय्याम 20 के रोज़े तो लगातार होते हैं, 13, 14 और 15 तारीख का रोज़ा होता है, ये मुस्तकिल हैं। इन 3 दिन में इंसान रोज़ा रख ले तो महीने के 3 दिन रोज़ों की फजीलत भी अदा हो जाएगी, अय्याम 20 की फजीलत भी अदा हो जाएगी। लेकिन वैसे महीने के 3 दिन रोज़े किसी भी वक्त रखे जा सकते हैं, एक साथ रखें, अलग अलग रखें, सब ठीक है, हर तरह साबित है। लगातार रखना भी साबित है, अलग अलग रखना भी साबित है। तो जिस तरह भी अमल कर लेगा, महीने में कोई भी 3 दिन रोज़े रख ले तो वो 3 दिन रोज़ों की फजीलत हासिल हो जाएगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी ऐसा होता था कि एक महीने में शुरू के हफ्ते के शुरू के 3 दिन, मसलन इतवार, पीर, मंगल रोज़ा रख लिया, और दूसरे हफ्ते में फिर बुध, जुमेरात, जुमा, या बल्कि हफ्ते से तो हफ्ता, इतवार, पीर, और उसके बाद वाले महीने में मंगल, बुध, जुमेरात, इस तरीके से, ताकि हर दिन रोज़ा रखना, यानी एक महीने में उस 3 दिन रोज़ा रखे थे तो आइंदा महीने में बाकी 2-3 दिन रोज़ा रख लें, तो हर दिन को भी रोज़ा रखने, अलग अलग दिनों के रोज़ा रखने का भी तذکرہ मिल जाता था, और यानी हर महीने में तरतीब बदल भी जाती थी। तो मुख्तलिफ तरीक़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल हैं। कभी ऐसा हुआ कि पीर के दिन रोज़ा रख लिया, फिर जुमेरात को रख लिया, और उसके बाद किसी दिन रख लिया, 3 दिन हो गए, तो लगातार भी रख सकते हैं और मुख्तलिफ अवकात में भी रख सकते हैं। कोविड हो गया है, پوری فیملی کو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اور ہر طرح کی بیماری سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، ہر طرح کی اللہ تعالیٰ ظاہری اور روحانی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے۔ یہ آج کل سننے میں آ رہا ہے کہ یہ پھر دوبارہ بیماری پھیر رہی ہے، لیکن نام تو اس کا وہی ہے جو پہلے تھا۔ پہلے اس کو کہا جاتا تھا بہت خطرناک بیماری ہے، اب کہتے ہیں بس زکام وغیرہ اسی حد تک محدود ہے، گلا خراب ہوتا ہے، زکام اور اس حد تک محدود ہے۔ بہرحال کوئی انشاءاللہ اپنے آپ کو پریشان نہ کرے انسان اس کی وجہ سے، آنے جانے والی چیز ہے، بیماری تو آتی ہے چلی جاتی ہے۔ انشاءاللہ یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے قرب کا اور گناہوں کی صفائی، درجات کی بلندی وغیرہ کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال علاج تو انسان کرے اور شفا کی دعا بھی کرے، یہ بھی سنت ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی امید رکھے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا کریں گے انشاءاللہ، بہت سی نعمتیں اس کے بدلے میں انشاءاللہ عطا ہوں گی۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر ہم جمعرات کو پھر جمع ہوں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ایک بات رہ گئی، سوال میں دوسرا حصہ تھا، صلاۃ و تسبیح کے دونوں طریقوں میں سے کون سا طریقہ اختیار کرنا افضل ہے؟ دونوں طریقے ٹھیک ہیں، دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ عام طور پر ہمارے حنفیہ وہ کہتے ہیں کہ شروع میں 15 مرتبہ اور پھر رکوع سے پہلے 10 مرتبہ پڑھنے کا جو طریقہ ہے، تاکہ قیام میں 25 ہو جائے اور دوسرا سجدہ کرنے کے بعد بیٹھنا نہ پڑے، اس کو عام طور پر ہمارے علماء بہتر قرار دیتے ہیں۔ لیکن ویسے دونوں ہی طریقے ٹھیک ہے، جس پر بھی انسان عمل کر لے دونوں صحیح ہیں۔ ایک اور کا دعا کا آیا، اور ظاہر ہے ہم سب پر حق ہے کہ ہم دعا کریں کہ بیٹا بیمار ہے، ہاسپٹل میں داخل ہے اور حالت اس کی درست نہیں، اللہ تعالیٰ مکمل صحت عطا فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، اور ہر طرح کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، جو متعلقین ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اور جو بیماریاں آ چکی ہیں ان سے شفا عطا فرمائے، جو نہیں آئیں اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے، اور ہر طرح کے ظاہری باطنی فتنوں سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔